और सिर्फ ये नहीं बल्कि हदीस पाक में आता है कि जब मोमिन तिलावत करता है कुरान की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जवाब देते हैं। जब वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। तो इसलिए कुरान पाक की तिलावत जो है बहुत बड़ा शर्फ, इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने वाली बड़ी इबादत है। और इस मुबारक कलाम का रमजान के साथ भी एक खास ताल्लुक है कि अल्लाह ने इस मुबारक कलाम को नाजिल ही रमजान में किया। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहि अल्कुरआन, रमजान ही का तो महीना है कि जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। पिछले 2-3 मजालिस से हम कुरान पाक की फजाइल बयान किए जा रहे थे। हमने ये बात अर्ज की कि क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है तो ये ऐसा कलाम है कि कोई और कलाम इसके मुकाबले में नहीं। तो चार ऐसे फजाइल, चार ऐसी खसूसियात जो और किसी किताब में नहीं। और पहली खासियत हमने बयान की कि ये तारीख इंसानियत की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। और दूसरी खासियत हमने कल की मजलिस में बयान की, ये वो आसमानी किताब है, जो एक ही आसमानी किताब है जो तहरीफ से महफूज है, यानी जो रद्द और बदल उसके अंदर अभी तक कोई नहीं हुआ और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो कल की मजलिस में हमने अर्ज किया कि अल्लाह ने इस मुबारक कलाम की जिम्मेदारी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, जिस तरह ये अल्लाह के प्यारे महबूब के मुबारक कल पर नाजिल हुआ उसी तरह आज भी मौजूद। आज की इस मजलिस में कुरान पाक की एक और खासियत बयान करना मकसूद, जो और किसी कलाम में नहीं, और वो ये कि अल्लाह ने उसको याद करना आसान कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया वलकद यस्सरना अल-कुरआन लिल-ज़िक्र, ये तहकीक हमने कुरान को याद करने के लिए आसान। और अगर आप देखें तो कुरान जितने हजम की कोई भी और किताब का आपको एक भी हाफिज नहीं। और कुरान पाक के हुफाज की तादाद इतनी कि सिर्फ हमारे इस शहर में 1 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान पाक को याद करना आसान कर दिया। इस हवाले से आज से चंद साल पहले का एक वाकया आपके सामने रखने का इरादा था कि ये 70s की बात है। हमारे मुल्क के एक इंजीनियर, उनका जाना हुआ रशिया स्टील मिल के किसी काम से। कराची के एक इंजीनियर थे, वो रशिया तशरीफ ले गए। नेक आदमी थे, नमाजी परहेजगार थे, इंजीनियर भी थे। तो वहां पहुंचे तो चंद दिन तक काम किया, तो जुम्मे का दिन आ गया। अब ये 70s की बात है, जब उस जमाने में रशिया में कम्युनिज्म का दौर दौरा था। दीन के ऊपर अमल करने पे पाबंदी थी, दीनी किताबें घर में रखने पे पाबंदी थी, दीनी इज्तिमात पे पाबंदी थी, इबादत पे पाबंदी थी। तो यही कम्युनिज्म का एक खास जो है वो वसफ था। जुम्मे का दिन आया तो वहां जो मेजबान थे उनसे उन्होंने कहा कि जी जुम्मे का दिन है, कोई नमाज मस्जिद में पढ़ना चाह रहे हैं। तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहती हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का तो कोई है ही नहीं, नमाज पढ़ने वाले को तो जेल में डाल दिया जाता है, चाहे वो मुसलमानों वाली नमाज पढ़ रहा हो या ईसाई वाली इबादत कर रहा हो या कोई भी और। उन्होंने कहा जितनी मस्जिदें हमारे यहाँ थी सारों को खत्म कर दिया गया, या तो वेयर हाउसेस बना दिए हैं उनको या उनको क्लब्स बना दिए हैं। दो मस्जिदें हैं वो रखी भी है हुकूमत ने, बाकी वो भी इबादत के लिए नहीं है, ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर, अगर टूरिस्ट देखना चाहे कि कदीम मस्जिदें कैसी थी तो वो है ये। ये साहब जो थे उन्होंने कहा कि भाई जमा तो हम जिंदगी भर मस्जिदों में पढ़ा है तो वहीं ले जाओ। तो कहा ले तो जाऊंगा मगर वो ऐसे खुली भी नहीं होंगी मस्जिदें, आप तो फायदा नहीं होगा, ऐसे कोई नमाज पढ़ नहीं सकेंगे। कहा जी ले तो जाए। तो पहुंच गए वहां, वाकईतन उस मस्जिद पे ताला लगा हुआ था, करीब कुछ रशियन मुस्लिम रहते थे उनके पास चाबी थी, उन्होंने चाबी उनसे ली। कहा जी चाबी तो दे रहे हैं मगर अगर आपने अंदर नमाज पढ़ी या इबादत करी और आपको अगर पुलिस वाले ले गए तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैं तो पाकिस्तानी हूँ, यहाँ का शहरी नहीं हूँ, तो ये वाले कानून मुझ पर लागू नहीं होते। चाबी लेके मस्जिद खोली, काफी देर तक तो मस्जिद को साफ किया पहले और फिर अजान भी दी इस उम्मीद पर कि 4-5 लोग आ जाएंगे तो हम जुम्मा करवा लेंगे। अजान दी और बैठ गए इंतजार में। अब रशियन मुसलमान बहुत सारे मस्जिद के इर्द गिर्द रहते थे मगर किसी की हिम्मत ना हुई मस्जिद के अंदर आने की। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिर को अपनी ही नमाज पढ़ के और मस्जिद बंद की बाहर निकले तो कुछ रशियन मुसलमान थे, उन्होंने कहा जी आपने बड़ी हिम्मत की, आपने अजान दी है वरना हमारे यहाँ कोई अजान देने की हिम्मत नहीं करता, तो आप हमारे यहाँ आए चाय पिए। कहने लगे कि नहीं मैं चले गया उनके यहाँ चाय पीने के लिए। घर में गया तो मेजबान जो थे वो अंदर चाय लेने चले गए, कुछ बच्चे बाहर सहन में खेल रहे थे। तो मैं यही सोच रहा था कि जहां नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ना जो है वो कानूनन जुर्म है, नमाज पढ़ना जुर्म है, मस्जिदें जाना ही है, तो इन बच्चों को तो कुरान भी नहीं आता, वो मुसलमान बच्चे है। तो कहने लगे कि अभी चाय में देर थी तो मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा आपको कुरान आता है? बच्चे ने कहा हाँ आता है। मेरे जेब में कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा था, मैंने निकाल के उसके सामने रखा, मैंने कहा ये पढ़ो यहाँ से। तो बच्चा पढ़ नहीं पाया, मेरी तरफ देख भी रहा है, मैंने कहा बेटा पढ़ो, पढ़ नहीं सकता। तो मान लगे मैंने वैसी एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहते बस यहां से मैंने ये आयत पढ़ी और वहां से इस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, आधे से ज्यादा पारा सुना दिया, ऐसे फर फर। मैं बड़ा हैरान, इसको कह रहा हूं कि जी ये पढ़ो, पढ़ नहीं रहा, एक आयत मैंने पढ़ी तो उसने आधा पारा सुना दिया। इतने में वालू भी चाय लेके आ गया। मैंने वालिद को बताया कि आपका बेटा जो है मैं समझ रहा था उसको कुरान नहीं आता है तो वो पढ़ भी नहीं रहा था, मगर मैंने एक आयत पढ़ी तो अब उसने आधा पारा सुना दिया मुझे। उसने कहा ये जो मेरा बेटा है ये हाफिज कुरान है, मगर हमारे यहाँ घर के अंदर कुरान का नुस्खा रखना जो है वो जुर्म है, घर में अगर किसी के कुरान का नुस्खा मिल जाए उसको जेल ले जाते हैं, कई कई सालों जेल में रखते हैं। तो घर के अंदर कुरान का कोई नुस्खा नहीं, मेरे बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज किया सिर्फ कुरान सुन सुनकर, पूरा कुरान सुनकर पूरा कुरान का हाफिज बन गया। अल्लाह ने इस कलाम को याद करना आसान कर दिया। कुरान पाक की खासियत में से एक खासियत यह है और बड़ी खासियत है, अल्लाह ने इस मुबारक कलाम याद करना आसान कर दिया है। تعالیٰ ہمیں اس مبارک کلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر اس مبارک مہینے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک کلام کی تلاوت کے لیے قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا رب. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.